Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhidanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
गूढ़ के बाद कहा अनुप्रविष्टम. अनुप्रविष्टम मतलब प्रविष्ट हुआ. प्रविष्ट हुआ का अर्थ यह होगा कि पहले दाखिल नहीं हुआ था, अब हो रहा है. जैसे आप लोगों ने नया फ्लैट खरीदा इस इलाके में, पुराने घर में रह रहे हैं, अब वास्तु पूजन किया, अब क्या करोगे आप लोग? प्रवेश करेंगे ना, गृह प्रवेश कहते हैं, घर प्रवेश कहते हैं. मतलब पहले आप उसमें नहीं थे, बाद में आप प्रवेश कर गए. तो क्या यह आत्मतत्व ऐसा है क्या, इसके पर उसने सब पूरा ब्रह्मांड बनाया और उसके बाद में घुस गया? अगर घुस गया या प्रवेश कर दिया तो एक बड़ी समस्या होगी. क्या समस्या होगी? वो वहां जैसे हम लोग रह रहे हैं किसी वन बेडरूम हॉल किचन में, वैसा ही यह आत्मा कहीं रहता होगा और उसको लगा कि ये अब ठीक नहीं है, ये चलो जगत में घुस जाए, प्रवेश कर जाए. ऐसा कोई प्रवेश नहीं है. अगर ऐसा प्रवेश है तो वह आत्मा अपने जैसे आकर वाला होगा और जैसे हम खत्म होने वाला है 100 साल के बाद. मुझे 100 साल ही कहना पड़ेगा, मैं अभी 10 साल नहीं कह सकता. 100 साल के बाद हम खत्म हो जाएंगे तो ये आत्मा भी वैसा ही है, तो वह भी खत्म होने वाला है. तो मेरे में और आत्मा में क्या फर्क हो रहा है? इसलिए यह आत्मतत्व का इस ब्रह्मांड में प्रवेश मानो तो वास्तव में नहीं है, लेकिन प्रवेश जैसा है. समझिए, प्रवेश जैसा माने क्या? या प्रवेश कहो या न प्रवेश, ऐसा बताओ ये प्रवेश जैसा क्या है. प्रवेश जैसा माने ऊपर सूर्य देवता है और नीचे 1000 घड़े शुद्ध जल से भरे हुए हैं, उसका प्रतिबिंब घड़े के अंदर दिख रहा है. छोटा बच्चा आकर यह कहता है, देखो 1000 सूर्य मैं देख रहा हूं. छोटे बच्चे की बात सही है या गलत है? गलत है. क्यों? उसका मूल ढूंढने जाएंगे तो वो तो ऊपर है, बिंब ऊपर है, यह सिर्फ प्रतिबिंब है. बस वैसी ही बात, यह परमात्मा इस शरीरों में मान लो या तो प्रवेश जैसा हो गया है, वास्तव में उसका प्रवेश नहीं है. अगर प्रवेश कर लिया होता तो वह आत्मा विभक्त हो जाता, लेकिन वह तो एक है, क्योंकि प्रवेश करने के लिए उसको अपने भाग करने पड़ेंगे, विभाजन करना पड़ेगा. इसलिए प्रवेश जैसा है. कहां पे है? सब जगह. इसलिए कहा अनुप्रविष्टम और फिर कहा गुहाहितम. गुह एक गुफा के अंदर है. ओ समझिए, हमारे यहां भी बंबई में एक कैनरी गुफा है, इलोरा अजंता की गुफा भी है, नाव में जाते हैं. तो ये जो आत्मतत्व है वो गुफा के अंदर रहता है. इसीलिए अब पता चला कि महात्मा लोग गुफा के अंदर जाके ध्यान क्यों करते हैं, क्योंकि वहां ही आत्मा वहां मिलता होगा. ऐसा कोई आत्मा गुफा के अंदर नहीं है. गुफा माने क्या? देहाद आभ्यंतर प्राण, प्राणाद आभ्यंतर मन, ततो कर्ता ततो भोक्ता, गुहा से यम परंपरा. ये देह के अंदर या देह से भी सूक्ष्म प्राण है. देह तो दिख रहा है, प्राण आंख से नहीं दिख रहा है. प्राण से भी सूक्ष्म है मन, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि. इसलिए कहा ततो कर्ता ततो भोक्ता. और उससे भी सूक्ष्म है, क्या है? वह आनंद जो विषय आनंद हम कहते हैं और उससे भी सूक्ष्म है वह है आत्मा। इसलिए ये जो परंपरा है देह प्राण मन बुद्धि और आनंदमय कोश, यह जो परंपरा है उसे ही गुहा कहते हैं, उसे ही गुफा कहते हैं। और वह आत्मा इन सब स्थूल से लेके सूक्ष्म तक से भी सूक्ष्म है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। सिर्फ अगर कैनरी केव्स की गुफा में या इलोरा जटा की गुफा में अगर वह रहता तो वह हमें जाना पड़ता और हम उसके दर्शन कर लेते, लेकिन यह परमात्मा कहां है? इस देह के अंदर ही है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ हनुमान जी की तरह चलो हम भी अपनी छाती को चीर ले भगवान के दर्शन हो जाएंगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्वामी जी? क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि हम जिसे आनंद मान रहे हैं विषयानंद, उससे भी वह सूक्ष्म है। हम ऐसा मानते हैं कि हमने कोई विषय का भोग किया, आनंद प्राप्त हुआ, हां ये आनंद है। या तो हमने ध्यान लगाया और ध्यान में कोई विचार नहीं आए और हम हां बहुत मजा आ गई, वह आत्मा का आनंद नहीं है। किसी महात्मा ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा, वाह वाह आज भाई धन्य होगा, वो भी आनंद तो है लेकिन वह आनंद आत्मा का नहीं है। आत्मा तो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वह किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता और वह इस शरीर में ही है। और सूक्ष्मतम दिखाने के लिए यहां कहा गुहाहितम, फिर बाद में कहते हैं गह्वरेष्ठम। गह्वरेष्ठम माने वह अनर्थों के बीच में रह रहा है। इस शरीर के अंदर बहुत अनर्थ है, काम क्रोध लोभ आसक्ति राग द्वेष, यह कंटक है। यह कंटक के बीच में जैसे गुलाब का फूल खिलता है, बस वैसी ही बात यहां है। यह शरीर के अंदर, शरीर माने मन के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह यह सब नित्य निरंतर उद्भूत होते रहते हैं। और वह आत्मा कहां है? मानो या उसके बीच में है, वास्तव में वो बीच में भी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि वह आत्मा गह्वरेष्ठम ये कंटकों के बीच के अंदर है। उतना ही नहीं, पुराणम कहा। पुराण का अर्थ हम तो देख चुके हैं पहले, पुराण का अर्थ है बहुत पुरातन या अनादि। एक अर्थ और भी कर सकते हैं, तीनों पुरों को, यानी कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो कि पुर है, वो तीनों पुरों को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। वह प्राप्त कैसे हो स्वामी जी? अध्यात्म योग अधिगमेन। अध्यात्म योग, भाष्यकार कहते हैं अध्यात्म योग माने क्या? मन का विषयों से हटाकर उसी मन को परमात्मा में जोड़ देना, उसी को कहते हैं अध्यात्म योग। योग के अर्थ है, एक है संयोग, कहते हैं ना आज योग हुआ इसीलिए स्वामी जी आपके स्वाध्याय में आना हुआ। दूसरा एक योग है जुड़ना, इसका इसके साथ योग होगा तभी ये दोनों आज पति पत्नी है। योग का अर्थ हुआ जुड़ना, तो यहां जुड़ना अर्थ है किसका? किसके साथ जुड़ना? मन का विषयों से छूटकर परमात्मा में जुड़ना। लेकिन मन स्वामी जी कैसे जुड़े? बोलना तो सरल है, मन तो विषयों में ही घूमता रहता है, आपके लिए तो बोलना सरल है। ये कैसी बात है कि बिल्ली मासी आ रही है, बिल्ली मौसी, और उंदरों की तादाद खत्म कर रही है। निर्णय हुआ क्या किया जाए, बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए ताकि वो आवे और हम सब लोग छू हो जाए। लेकिन प्रश्न क्या हुआ, बिल्ली के गले में घंट बांधे कौन, बांधने गया वह समाप्त हो गया। ये चूहे आपस से बात कर रहे हैं, वैसी ही बात है। यह मन विषयों से छूटकर परमात्मा में जुड़ जाए, उसी को कहते हैं अध्यात्म योग। लेकिन स्वामी जी, मन विषयों से छूटे कैसे? हम तो जैसे ही अपने कार्य से निवृत्त होते हैं और बैठते हैं तो सीधा मन क्या सोचने लगता है, विषयों में घूमने लगता है, कहां से सुख मिलेगा, कहां से सुख मिलेगा, कहां से सुख मिलेगा, कहां से सुख मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ, यह मन जो है नित्य निरंतर सुख की चाह कर रहा है। देखिए, ये हमारे जीवन की कथा चल रही है। हमारे जीवन में यह आम तौर पे हर रोज सबके साथ घटता है। सुख कहां मिले, मन वहां दौड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सुख अगर मन को दिखाया जाए तो स्वाभाविक है मन वह गौण सुख को छोड़कर जो सुख नित्य है उसके पीछे भागेगा। सवारी गई है तो आपके पास मान लीजिए बहुत पुरानी गाड़ी है, फियाट गाड़ी, और किसी ने आपको कहा कि मैं आपको बढ़िया गाड़ी देने को तैयार हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए अमेरिका, तुम मेरी गाड़ी रख लो, ब्रांड न्यू है, दो दिन पहले ही ली है। लेकिन बेटे ने कहा पिताजी अब यहां आ जाओ। अब आप क्या करोगे, पुरानी गाड़ी को छोड़कर भले ही वह पुरानी गाड़ी अच्छी हो लेकिन रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, पेट्रोल ज्यादा खा रही हो, वह छोड़कर आप नई गाड़ी लेना पसंद करोगे? एक लीटर पेट्रोल में कितनी एवरेज देती है सब आप लोग देखोगे। बस वैसी ही बात यहां है, विषयों से सुख तो प्राप्त हो रहा है इसलिए मन वहां दौड़ रहा है बार बार। उससे भी अगर ज्यादा श्रेष्ठ सुख अगर मन को दिखला दे कि यह जो आत्मतत्व है वह आनंद स्वरूप है, वह अनित्य सुख वाला नहीं है लेकिन नित्य सुख वाला है, वह उदित और नाश होने वाला सुख नहीं है, अगर यह मन को समझाया जाए तो मन उस विषयों से छूटकर परमात्मा यानी कि जो आत्मा है, आनंद स्वरूप है, इसके पीछे अवश्य दौड़ेगा। लेकिन वह महत्व मन को सबसे पहले समझना चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि जो विषय भोग से सुख मिलता है वह तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, और शास्त्र जिस आत्मतत्व की बात कर रहा है जो कि आनंद स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं हो रहा है स्वामी जी, तो वहां हम कैसे जुड़े, मन कैसे वहां जुड़ जाए? हम प्रत्यक्ष अनुभव को प्रमाण मान के चल रहे हैं और यह आत्मा आनंद स्वरूप है उसके लिए तो सिर्फ शास्त्र प्रमाण है। अभी तो हम आनंद भुगत ले, बाद में यह आत्मदर्शन होगा सो होगा, इसलिए हम यह आत्मतत्व जो आनंद स्वरूप है उसके पीछे दौड़ते नहीं है। वह उधार सुख है इस वक्त हमारे लिए, वो बाद में मिलेगा, और यहां तो विषय भोग से तो कैश सुख है, अभी भुगता विषय भोग और अभी आनंद हो गया। लेकिन जरा सोचने जैसी बात है। अगर विषय भोग से ही सुख प्राप्त होता तो जागृत अवस्था में हमने बहुत सुख भोगे, स्वप्न अवस्था में भी हमें सुख प्राप्त होता है। यहां बैठे बैठे हम अमेरिका, लंदन, फ्रांस घूम के आ जाते हैं, तो वहां भी विषय तो है, भले सुख विषय है, लेकिन एक अवस्था ऐसी है कि जिसमें ना विषय है, ना इंद्रिया है, ना मन है, फिर भी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं वह सुषुप्ति अवस्था के अंदर। और सुषुप्ति अवस्था में हमें जितना आनंद मिलता है उतना आनंद तो विषय भोगने के बाद भी नहीं मिलता जागृत और स्वप्न अवस्था के अंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि विषय भोग में वास्तव में सुख नहीं है, हमने मान रखा है। लेकिन स्वामी जी, ये आत्मतत्व का तो अनुभव होता ही नहीं है, तो उसमें आनंद है वह हम कैसे समझे? बात सही है, उसमें आनंद है हम कैसे समझे, लेकिन हमने हमारी गलत धारणाओं के अनुसार मान रखा है कि विषय भोग से सुख मिलता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब विषय की इच्छा होती है तो मन में चंचलता उत्पन्न होती है, भोग प्राप्त हो गया और जैसे ही हमने भोग किया हमें आनंद मिला, लेकिन वह जो आनंद मिल रहा है ना, वह विषय की मांग करने वाला जो मन था, वह मन उस वक्त शांत हो गया। मन शांत हो गया और हम मान रहे हैं विषय भोग से हमें सुख मिल रहा है। वैसे वास्तव में तो मन शांति की वजह से सुख मिल रहा है, लेकिन हमने मान रखा है विषय भोग किया सुख मिल गया। वह जो सुख मिला, आनंद मिला, वह भी वास्तव में तो उसी परमात्मा का प्रतिबिंब ही है, लेकिन हम तो मान रहे हैं विषय भोग से ही सुख प्राप्त हो रहा है। यह हमारी भूल है। आप बैंक में गए और आपको 1,00,000 रुपया बैंक में से विड्रॉ करना है, उठाना है, और उसने मशीन बिगड़ा हुआ है कैशियर ने, तो हाथ से गिनकर आपको दे दिया, आपने लिया, आपने गिना और उसमें 1,000 की सिर्फ 99 नोट है। दूसरी बार गिनोगे और फिर उसको क्या कहोगे? यह आपकी भूल है, एक नोट कम है। ज्यादा होगी तो आप क्या कहेंगे आपको मालूम, लेकिन कम होगी तो अवश्य कहेंगे कि इसमें भूल है भाई, जरा वापस गिनो। वह भूल हम पकड़ लेते हैं, लेकिन यह जो भूल है कि विषय में वास्तव में सुख है ही नहीं, वह भूल हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। पकड़ते नहीं है इसलिए यह भूल है वह समझ में आता नहीं है। यह भूल सबसे पहले पकड़नी चाहिए, भूल पकड़ेंगे भूल से निवृत्त हो जाएंगे कि विषय में वास्तव में सुख है ही नहीं। यह गलती हम सबको सबसे पहले समझनी होगी, सोचकर विचार करके। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं कहूंगा आप सुनेंगे वह तो उधार होगा, आप सुनेंगे, आप विचार करेंगे, आप निर्णय करेंगे तो बात सही है। अगर मन ने भूल पकड़ ली कि वास्तव में विषय में सुख है ही नहीं, मन विषयों से निवृत्त होता जाएगा। जैसे जैसे निवृत्त होता जाएगा, विषयों की लालसा, मन की चंचलता अपने आप समाप्त होने लगेगी। और विषय जब रहा ही नहीं, स्वाभाविक रूप से आप अपने स्वरूप में स्थित है। लेकिन यह भूल समझ में आनी चाहिए। बच्चा अगर भूल करता है तो हम कहते हैं, बेटे अब तू बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया, अब थोड़ा सयाना बन, कब तक भूल करता रहेगा। बेटे को हम कहते हैं, बेटी को हम कहेंगे। शास्त्र, सदगुरु और ऋषि मुनि भी आप लोगों को कहेंगे। अब तो 50 के ऊपर हो गए, कब तक भूल करते रहोगे। अब तो सयाने बनिए। नहीं स्वामी जी, हम एकदम सयाने हैं। आपने मान रखा है कि आप सयाने हैं। शास्त्र दृष्टिकोण से अभी आप सयाने नहीं हुए। क्यों? विषय में अभी भी सुख मान रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले निर्णय करना होगा, क्या विषय में सुख है। अगर है तो वह सुबह से लेकर शाम तक हमको सुख देना चाहिए। लेकिन अनुभव तो स्पष्ट रूप से कह रहा है, विषय सुख है, उत्पन्न तो होता है, समाप्त तो हो जाता है। शास्त्र कहता है यह जो विषय का सुख है वास्तव में ब्रह्मानंद का ही सुख है। आपने मान रखा है कि इसमें सुख है। गलती आप लोगों की है, और आपकी गलती है तो सुधारना ही आपको है। शास्त्र मदद कर सकता है, ये आपकी गलती है, हम आपको मदद कर सकते हैं। तो क्या करना है? गलती तो हो गई स्वामी जी, बताइए। अध्यात्म योग, विषय से छूटकर उसी मन को परमात्मा में लगा दीजिए। लेकिन लगेगा कब? कि इससे भी ज्यादा सुख है। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य, उपनिषद कहता है। ये सुख है कैसा कि जो इससे भी श्रेष्ठ है, विषय सुख से भी श्रेष्ठ है। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, जिन्होंने आत्मतत्व का श्रवण किया है और जिसके मन में कोई कामना है ही नहीं, वैसा जो ब्रह्मज्ञानी का सुख है उसका वर्णन उपनिषद में आता है। मनुष्य मनुष्य गंधर्व, देव देव गंधर्व, आजान देव, उनके जो सुख है उससे भी ज्यादा सुख है। इंद्र का जो सुख है उससे भी ज्यादा सुख है। उतना ही नहीं, और एक राज की बात आपको बता दें, किसी को बोलना नहीं है, जाहिर में कह रहा हूं लेकिन किसी को बताइएगा। यह आत्मतत्व जान लेने से हमारी सभी इच्छाएं सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, हमने तो आज तक ये समझा था, एक इच्छा की वह पूर्ण हो गई, दूसरी इच्छा उद्भूत हुई वह भी पूर्ण की, तीसरी जन्मी वह भी पूर्ण की, चौथी की वह भी पूर्ण की, पांचवी हुई वह भी पूर्ण की। लेकिन ये जान लेने से सभी इच्छाएं एक साथ में पूर्ण हो जाएगी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम तो इतने सालों से इसमें ही लगे हुए थे। इच्छा करो, पूर्ण करो, सुखी हो जाओ। ये जान लेने से सभी इच्छा, मान लीजिए, हां समझ लीजिएगा, सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ऐसा यह तत्वज्ञान, ऐसा यह आत्मज्ञान वह जान लेने से अब कोई इच्छा शेष रहती नहीं है। क्योंकि जब तक इच्छा रहेगी मन में चंचलता रहेगी, लेकिन यह आत्मतत्व को जान लेने से, जो कि पूर्ण आनंद स्वरूप है, जान लेने के बाद कोई इच्छा शेष रहेगी नहीं। वैसा वह आत्मा जो कि पूर्ण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसके साथ जुड़ जाना, उसी को कहते हैं अध्यात्म योग। बाद में कहते हैं देवम मत्वा धीर हर्ष शोको जहाती। उस देवता को जानकर उस आत्मज्ञान का फल क्या, उस परमात्मा को, उस आत्मतत्व को जानकर धीर हर्ष शोको जहाती। हर्ष और शोक, सुख और दुख, इन सबको छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब सुख और दुख उसके जीवन में प्रारब्ध वशात तो ज्ञानी के जीवन में आएंगे ही, लेकिन अब उसे स्पर्श नहीं करेगा। अज्ञानी होगा तो रोएगा, छाती पीटेगा, मेरे कोई दुख है और किसी को नहीं है। बाकी सब सुख में घूम रहे। ज्ञानी के जीवन में भी सुख दुख आएंगे लेकिन अब उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह प्रारब्धाधीन है। तो यह आत्मज्ञान का फल है कि मन को विषय से छुड़ाकर आत्मा में या परमात्मा में लगा देने से जीवन में कभी सुख और दुख होंगे ही नहीं। नहीं समझिए, हमको दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, यह नहीं संभव है। एक रुपए का सिक्का है, आगे क्या बोलते हैं आप, हेड और टेल, हां आगे हेड हो पीछे टेल ना हो, यह संभव नहीं होगा। हेड भी होगा टेल भी होगा, दोनों होंगे। उसी तरह सुख भी होगा तो दुख भी होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम दुख नहीं चाहिए, सुख हमको आने दो, नहीं होगा। ये ज्ञान प्राप्त करने से सुख और दुख उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं करते हैं। यह आत्मज्ञान का बहुत बड़ा फल है। इसलिए यह आत्मज्ञान जीते जी प्राप्त कर लेना चाहिए। जब तक ये श्रोत्रेंद्रिया काम कर रही है ना, वह प्राप्त कर लेना चाहिए। क्यों, अभी स्वामी जी पांव काम नहीं कर रहे हैं, हम यहां सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करें, बिस्तर में लेटे हुए हैं। बिस्तर में अगर लेटे हुए हैं, पहले श्रवण किया होगा तो वह लेटे लेटे भी उसके विचार आएंगे कि समस्या शरीर को है मुझे नहीं है। यह ज्ञान उसमें काम आता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, जब तक ये श्रोत्रेंद्रिया काम कर रही है, यह आत्मतत्व का श्रवण कर लीजिए। फिर कब मिलेगा पता नहीं। बाकी की मंत्र कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।